केकतरा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिनकी कहानी पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं है, हाल के दिनों में वो दृढ़ता और घर वापसी का एक चेहरा बन गई हैं।
हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटनी ग्राइनर की
और उनकी 2024 की आत्मकथा कमिंग होम।
बिल्कुल, ब्रिटनी ग्राइनर का नाम सुनते ही जहन में आता है WNBA चैंपियनशिप, दो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। लेकिन उनकी ये किताब उस चमक दमक से कहीं आगे जाती है। ये असल में रूस में उनकी जो करीब 300 दिनों की मुश्किल हिरासत थी,
हाँ,
और उसके बाद की उनकी यात्रा, उसकी कहानी है।
हाँ, और वो 294 डेज वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक सबक बन गए। 6 फुट 9 इंच की हाइट, कोर्ट पर तो एक जबरदस्त ताकत है वो।
सही,
लेकिन ये किताब उस इंसान की कहानी कहती है जो उस छवि के पीछे है।
सही कहा, ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं है, ये पहचान से जुड़ती है, नस्ल, लैंगिकता, मतलब LGBTQ+ अधिकारों से,
और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक भी जाती है।
हाँ, और यहाँ तक कि कूटनीति के मुद्दों से भी जुड़ती है।
और किताब का नाम कमिंग होम, घर वापसी, ये अपने आप में बहुत गहरा है। ऐसा लगता है जैसे ये किताब पूछती है कि घर आखिर होता क्या है,
बिल्कुल, क्या वो सिर्फ एक जगह है या
कुछ और।
हाँ, ग्राइनर की कहानी शायद यही दिखाती है कि कभी कभी जब सब कुछ छिन जाता है ना, तभी हमें एहसास होता है कि असलियत में क्या चीज मायने रखती है। ये सिर्फ एक एथलीट की कहानी नहीं है,
नहीं
ये अपनेपन की तलाश में एक इंसान की जद्दोजहद है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा थोड़ा और समझते हैं।
बिल्कुल, उनकी शुरुआत देखें तो जन्म ह्यूस्टन टेक्सास में, परिवार का माहौल भी जैसा आपने बताया काफी अनुशासन वाला था।
हाँ, पिता रेमंड वियतनाम युद्ध के अनुभवी थे और बाद में शेरिफ बने,
अच्छा,
और मॉ सैंड्रा वो एक मजबूत भावनात्मक सहारा थी, तो वो अनुशासन और आप कह सकते हैं एक तरह का लचीलापन भी।
वो शायद बचपन से ही मिला।
हाँ, लेकिन वो बचपन आसान नहीं था। उनकी असाधारण हाइट जो बाद में कोर्ट पर उनकी ताकत बनी,
हाँ,
शुरुआती दिनों में खासकर मिडिल स्कूल में उनके लिए मजाक और मतलब बेवजह के ध्यान का कारण बनी। वो अक्सर अकेला महसूस करती थीं, दूसरों से अलग।
और ये जो अलग महसूस करने का अनुभव है शायद यहीं से बास्केटबॉल ने उनकी जिंदगी में जगह बनाई,
हाँ बिल्कुल, वो कोर्ट एक पनाहगाह बन गया उनके लिए।
जहां उनकी हाइट बोझ नहीं थी।
सही, बल्कि एक तोहफा थी। ये एक दिलचस्प मोड़ है, जहां दुनिया उन्हें अलग महसूस करा रही थी, वहीं खेल ने उन्हें अपनाया। लेकिन ये अपनापन भी आसान नहीं था। अंदर ही अंदर पहचान को लेकर, अपनेपन को लेकर, और मतलब एक प्रामाणिक जीवन जीने की कश्मकश चलती रही।
हाई स्कूल में चीजें कुछ बदली, निमित्स हाई स्कूल में उन्हें कोच डेबी जैक्सन मिली।
हाँ, और वो सिर्फ कोच नहीं थी, वो एक तरह से माँ जैसी थी उनके लिए।
अच्छा,
उनकी गाइडेंस में वो एक थोड़ी अजीब सी दिखने वाली लंबी लड़की से बास्केटबॉल की सनसनी बन गई।
फिर कॉलेज का दौर आया बायलर यूनिवर्सिटी में कोच किम मल्की के साथ।
हाँ, और यहाँ उनका खेल और निखरा। वो सिर्फ एक अच्छी खिलाड़ी नहीं रही, बल्कि अपनी पीढ़ी की मतलब बेहतरीन खिलाड़ियों में गिनी जाने लगी।
2012 में उनकी टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीती, वो भी बिना कोई मैच हारे, ये तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन कॉलेज के दिनों में उनकी अंदरूनी जद्दोजहद और बढ़ गई।
किस तरह की?
एक तरफ कोर्ट पर सफलता थी, दूसरी तरफ अपनी लैंगिक पहचान, अपना धर्म, समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने का संघर्ष। ये वो दौर था जब वो खुद को समझने की कोशिश कर रही थी कि वो असल में कौन है।
और ये संघर्ष उनकी किताब का एक अहम हिस्सा है ना?
हाँ, वो खुलकर बताती हैं कि कैसे उन्होंने इन दबावों का सामना किया। ये दिखाता है कि बाहरी सफलता के पीछे अक्सर एक गहरा आंतरिक संघर्ष छिपा होता है।
2013 उनके करियर का बड़ा साल था, WNBA ड्राफ्ट में फिनिक्स मर्करी ने उन्हें पहले नंबर पर चुना।
हाँ, और आते ही उन्होंने लीग में अपनी छाप छोड़ी, उनकी डंक करने की क्षमता,
जो बहुत रेयर है विमेन्स बास्केटबॉल में।
बिल्कुल, और उनके शॉट ब्लॉक करने का अंदाज, वो सब एकदम अलग था।
कोर्ट पर तो वो छा गई, लेकिन कोर्ट के बाहर एक खुले तौर पर गे एथलीट होना उस समय।
हाँ, उसकी अपनी चुनौतियां थीं, समाज का नजरिया, मीडिया का ध्यान, इन सब के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था।
फिर भी उन्होंने सफलता हासिल की, 2014 में फिनिक्स मर्करी के साथ WNBA चैंपियनशिप जीती
और टीम USA के साथ दो ओलंपिक गोल्ड 2016 और 2021 में।
ये उनकी लगन और प्रतिभा का सबूत है।
बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे वो सफल होती गई, उनमें एक सामाजिक चेतना भी जाग रही थी। वो समझने लगी थीं कि उनके पास एक मंच है, एक आवाज है, जिसका इस्तेमाल वो बदलाव लाने के लिए कर सकती हैं।
और यहीं से कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित और मुश्किल मोड़ लेती है। WNBA का ऑफ सीजन होता है।
हाँ, तो कई खिलाड़ी ज्यादा पैसे कमाने के लिए विदेशी लीग्स में खेलते हैं।
ब्रिटनी भी रूस में खेलने जाती थी।
और फरवरी 2022 में मॉस्को के एयरपोर्ट पर उनके सामान में कथित तौर पर हैश ऑयल के कार्ट्रिज मिलने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
और ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर साबित हुआ, 294 दिन रूसी हिरासत में।
हाँ, और यही किताब का दिल है, उन दिनों का डर, वो नाउम्मीदी, अकेलेपन का एहसास
और कभी कभी उम्मीद की हल्की सी किरण।
बिल्कुल, उन्होंने बहुत ईमानदारी से सब कुछ लिखा है। ऐसा लगता है जैसे उस कैद ने बाहरी दुनिया की सारी परतें हटा दी और उन्हें सीधे जीवन के मूल सवालों से रूबरू करा दिया।
सही कहा, और यही अनुभव शायद हमें उनके जीवन के मूल दर्शन और मूल्यों को समझने में मदद करता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक तरह का परिवर्तन था।
हाँ, जैसे उनका ये मानना कि प्रामाणिक यानी सच्चा जीवन जीने के लिए हिम्मत चाहिए,
और हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे,
बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है। एक अश्वेत महिला होना, एक गे महिला होना, इतनी लंबी होना, इन सब अनुभवों ने दुनिया को देखने का उनका नजरिया बनाया। वो समाज में मौजूद जो गैर बराबरी है, सिस्टेमिक इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं,
व्यवस्था में बसी हुई असमानता,
हाँ, उसके प्रति बहुत जागरूक है।
और चुने हुए परिवार का विचार, ये उनके लिए बहुत अहम लगता है।
बहुत अहम, मतलब घर सिर्फ खून के रिश्तों या किसी जगह से नहीं बनता, घर वो लोग बनाते हैं जो आपको सच में देखते हैं, समझते हैं,
आपका साथ देते हैं
और मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होते हैं। ये सोच शायद उनके शुरुआती अकेलेपन के अनुभवों से भी जुड़ी हो।
हाँ, हो सकता है। और एक बात जो उनकी पूरी कहानी और किताब में उभर कर आती है, वो है कट्टर ईमानदारी।
बिल्कुल, उनका मानना है कि जो आप नहीं हैं वो बनने का दिखावा करना किसी भी जेल में बंद होने से ज्यादा घुटन भरा होता है। खुद के प्रति सच्चा रहना ही असली आजादी है।
इन सब के पीछे उनकी प्रेरणा क्या रही होगी? जाहिर है, खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने की चाहत तो थी ही। शायद शुरू में ये उनके अलग होने को एक सकारात्मक चीज में बदलने का तरीका रहा हो।
हाँ, शुरुआत शायद यहीं से हुई हो, लेकिन धीरे धीरे ये समझ बनी कि अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि का इस्तेमाल बड़े मकसद के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कैसे किया जाए।
अच्छा,
अपनेपन की जो उनकी खुद की तलाश थी, वो दूसरों के लिए स्वीकृति और अपनेपन की जगह बनाने की प्रेरणा बन गई।
और जब वो न्याय की बात करती हैं, तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं होती, वो उनके अपने अनुभवों से निकलती हैं।
सही,
जो लोग हाशिए पर हैं, उनकी आवाज बनना, उनके लिए लड़ना, ये जज्बा उनके अपने संघर्षों से पैदा हुआ है। मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका भी वक्त के साथ बदला है शायद।
हाँ बिल्कुल, शायद पहले वो बचती होंगी, फिर उन्होंने सामना करना सीखा और आखिरकार उन्होंने उन मुश्किलों को अपनी पहचान और अपनी ताकत का हिस्सा बनाना सीखा।
वो इसे नियंत्रित भेद्यता कहती हैं, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी।
हाँ, मतलब अपने दर्द और डर को स्वीकार करना, उसके बारे में बात करना, लेकिन साथ ही अपनी अंदरूनी ताकत को बनाए रखना, ये एक तरह का संतुलन है।
और सबसे अहम बात, उन्होंने अपनी मुश्किलों को, अपने दर्द को वकालत में बदल दिया, दूसरों की आवाज बनने में।
बिल्कुल, ये समझना कि उनका दर्द उन्हें दूसरों के संघर्षों से जोड़ सकता है और उनका मंच व्यवस्था में बदलाव लाने का एक जरिया बन सकता है, ये एक बड़ी बात है।
उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए, लेकिन किताब खास तौर पर तीन ऐसे पलों पर जोर देती हैं जिन्होंने मतलब उनकी दिशा ही बदल दी।
हाँ, पहला 2013 में जब वो सार्वजनिक रूप से सामने आई,
मतलब जब उन्होंने खुलकर अपनी समलैंगिक पहचान को स्वीकार किया।
हाँ, WNBA ड्राफ्ट के ठीक बाद, ये पहली बार था जब उनकी सार्वजनिक छवि और उनकी निजी सच्चाई वो एक साथ आईं।
ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं था, है ना, इसने उनके सोचने का तरीका बदल दिया।
बिल्कुल, वो सिर्फ एक बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं रहीं, वो एक रोल मॉडल बन गईं, एक आवाज बन गईं, और उन्होंने जानबूझकर अपने मंच का इस्तेमाल करना शुरू किया।
दूसरा बड़ा मोड़ कब आया?
वो आया 2020 में, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद। अमेरिका और दुनिया भर में नस्ली अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन उठा, उसने ब्रिटनी को भी गहराई से प्रभावित किया। वो पहले भी इन मुद्दों पर बोलती थी।
हाँ, लेकिन
अब वो एक मुखर वकील बन गई। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल सिस्टमिक रेसिज्म,
समाज के ढांचे में बसे नस्ली भेदभाव,
हाँ, और पुलिस की ज्यादतियों जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए किया। उन्हें एहसास हुआ कि शोहरत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है।
और उनके अपने अनुभव कैसे बड़े सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हैं।
बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला मोड़,
वो रूस में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत।
हाँ, वो 294 डेज 17 फरवरी 2022 से लेकर उनकी रिहाई तक का समय।
इस अनुभव ने उन्हें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर किया होगा जिनके बारे में शायद सोचा भी ना हो। मौत का डर, बेबसी,
पूरी तरह से बेबस हो जाना। आज़ादी का सही मतलब क्या है? उन अंधेरे दिनों में, जैसा कि वो लिखती हैं, उन्होंने उम्मीद की ताकत को समझा।
दुनिया भर से जो समर्थन मिला,
हाँ, उसका महत्व जाना और ये भी सीखा कि अकेले होने और दुनिया द्वारा भुला दिए जाने में क्या फर्क होता है।
और उनकी रिहाई, जो एक जटिल कैदी अदला बदली के जरिए हुई,
वो सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं थी, वो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन गई जिसने एक सार्वजनिक हस्ती के तौर पर उनकी भूमिका को हमेशा के लिए बदल दिया।
ये सब सुनने के बाद लगता है कि उनकी कहानी में ऐसे कई सबक हैं जो मतलब हम सबके लिए हैं, चाहे हम बास्केटबॉल फॉलो करते हों या नहीं।
बिल्कुल। सबसे पहला सबक तो शायद यही है कि अपनी सच्चाई और समाज की उम्मीदों के बीच का संघर्ष कितना मुश्किल हो सकता है।
हाँ।
जब आप दूसरों से अलग होते हैं तो अकेलापन बहुत गहरा महसूस होता है, लेकिन जब कोई आपको सच में देखता है, आपको वैसे ही स्वीकार करता है, तो वो एहसास जिंदगी बदल देता है।
हाँ।
दूसरा सबक है मुश्किल हालात में डटे रहने की ताकत, जिसे हम लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं। लेकिन उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि ये ताकत अकेले नहीं आती, ये आती है आपके आसपास के लोगों से, आपके समुदाय से, आपके चुने हुए परिवार से।
एक सपोर्ट सिस्टम का होना कितना जरूरी है।
बहुत जरूरी। तीसरा, और ये बहुत अहम है, कि कैसे गहरे दर्द और मुश्किल अनुभवों में भी कोई मतलब ढूंढा जा सकता है। कैसे अपने आघात को, अपनी चोट को दूसरों की मदद करने का जरिया बनाया जा सकता है। ये आसान नहीं है, लेकिन संभव है।
और साहस के बारे में उनकी सोच, कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप में पैदाइशी होती है।
नहीं, ये एक आदत है, एक चुनाव है, जिसे आप रोजमर्रा के छोटे छोटे ईमानदार फैसलों और कामों से बनाते हैं।
सही।
और आखिर में घर की परिभाषा पर वापस आते हैं।
हाँ, घर शायद कोई बनी बनाई जगह नहीं है, ये एक एहसास है जिसे हम खुद बनाते हैं, सच्चे रिश्तों से, आपसी देखभाल से।
और ऐसी जगहें बनाकर जहां हम बिना किसी डर या दिखावे के वैसे रह सकें जैसे हम असल में हैं।
बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए, अगर हमें 3 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक व्यावहारिक, तो वो क्या होंगी?
देखिए, पहली एक भावनात्मक सीख। उन जगहों पर जहां सब एक जैसे होने की उम्मीद की जाती है, वहां अलग होना बहुत अकेला महसूस करा सकता है। लेकिन किसी ऐसे इंसान या समूह को पाना जो आपको आपकी असलियत में देखता और अपनाता है, वो जिंदगी को बदल सकता है। सबसे सच्चा परिवार अक्सर वही लोग बनते हैं जो तब आपके लिए लड़ते हैं जब आप खुद लड़ने की हालत में नहीं होते।
ये बहुत गहरी बात है। दूसरी, एक बौद्धिक नजरिए से।
हाँ, बौद्धिक नजरिए देखें तो किसी व्यक्ति की पहचान के अलग अलग पहलू, जैसे नस्ल, लिंग, यौनिकता और समाज में मौजूद बड़े पैमाने पर होने वाला भेदभाव, जिसे प्रणालीगत उत्पीड़न कहते हैं,
सिस्टमिक ऑपरेशन।
हाँ, ये दोनों चीजें मिलकर कुछ लोगों के लिए बहुत खास तरह की मुश्किलें और चुनौतियां पैदा करती हैं, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत हिम्मत काफी नहीं है,
समाज के ढांचे में भी बदलाव जरूरी है।
बिल्कुल। खुद को बदलना और समाज के लिए लड़ना, ये अलग अलग नहीं बल्कि इंसान की गरिमा और आजादी की एक ही लड़ाई के दो जुड़े हुए हिस्से हैं।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख जो हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं,
वो ये कि घर कोई जगह नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला काम है, एक अभ्यास है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी जगहें बनाएं अपने रिश्तों में, अपने समुदायों में, जहां लोग अपनी सच्ची पहचान के साथ बिना किसी डर के जी सकें,
और जहां उनकी सच्चाई का सम्मान हो, उसे मनाया जाए।
हाँ, सच्चा अपनापन किसी मुखौटे या दिखावे से नहीं मिलता, ये तभी मिलता है जब हम में अपनी पूरी सच्चाई के साथ जीने का साहस हो और हम ऐसे लोगों के साथ हों जो इस सच्चाई का आदर करते हों।
बहुत खूब। ये थी ब्रिटनी ग्राइनर की कहानी और उनकी किताब कमिंग होम से कुछ अहम बातें। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।